أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 30 پچھلی دفعہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نامہ اعمال کا مشاہدہ کیا جائے گا اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو چیزیں نظر آئیں گی حتیٰ کہ اس کو اپنے اعمال تک مجسم نظر آئیں گے اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ لو یہ گناہ ہے کہ جو تم نے انجام دیے تھے اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اصلاً یہ خود اپنے آپ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے انسان کا کسی کو اگر آپ ایک تھپڑ مار دیں تو یہ گویا آپ نے اپنے منہ پر تھپڑ مارا ہے کسی کی کوئی چیز کسی نے اگر چوری کی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے نامہ اعمال سے کوئی چیز چوری کر لی اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں اس نے چوری کر لی اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مال نکال لے تو وہ دیکھے گی قیامت کے دن اس کی نیکیاں شوہر کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی اچھا اسی طریقے سے جب ہی بار بار جملہ ہم کو ملتا ہے اور دعائے کمیل میں بھی آپ پڑھتی ہیں غلم تو نفسی مولا نے تعلیم دینے کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تو جتنے بھی ہم گناہ انجام دیتے ہیں یہ گویا اپنے اوپر ہی ایک ظلم ہے روایات میں تو یہاں تک بات ملتی ہے کہ جو شخص بھی کسی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے اس نے اپنے اوپر ایک ظلم کیا ہے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا خود اپنے اوپر ایک ظلم ہے اور حضرت آدم کی بھی دعا ہے اور تمام انبیاء کی دعا رہی کہ ربنا ظلمنا انفسنا کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے نہ صرف یہ کہ حضرت آدم کی یہ دعا ہے بلکہ تمام انبیاء کی یہ دعا رہی کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اچھا اسی طرح سے جو آپ خطبہ بھی سنتی ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جی جو یزید کے دربار میں تھا کہ اے یزید تو نے کسی کی کھال نہیں کھینچی مگر تو نے خود اپنی کھال کھینچی اور تو نے کسی کے گوشت کو نہیں کاٹا مگر یہ کہ تو نے خود اپنے گوشت کو کاٹا اے یزید تو نے حسین کا سر نہیں کاٹا ہے مگر اپنے سر کو قطع کر دیا ہے آقا مظاہری فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عذاب آخرت میں دیے جائیں گے اگرچہ جنت و دوزخ کے خارجی حقیقت کے طور پر موجود ہے لیکن جتنے بھی عذاب اور ثواب ہوں گے وہ سب کے سب آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا انتظام خود کیا یہاں تک فرماتے ہیں کہ گھر جب تلخیوں کا اور جھگڑوں کا مجموعہ بن جائے تو زقوم کے درخت میں تبدیل ہو جاتا اور یہ جو روزانہ کے ہم امور نماز اور روزے انجام دیتے ہیں تو شام کے وقت گھریلو تمام جھگڑوں کے باعث جب شام ہوتی ہے تو ہم جہنم میں اپنے لیے زقوم کے ایک درخت کو کاشت کر لیتے ہیں زقوم کا درخت کاشت ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے جو اعمال جب مجسم ہوں گے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو بازار جو کہ گناہ جو لوگوں کو نظر آئیں گے وہاں پر جیسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی زبان دراز ہو عورت ہو یا مرد ہو جو بہت زبان درازی کرتا ہو یا کرتی ہو روزے محشر اس کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ زمین پر گھسٹتی ہوئی ہوگی حتیٰ کہ خود وہ اپنی زبان سے الجھ کے گرے گا یا وہ عورت اپنی زبان اتنی لمبی ہو کے لٹک رہی ہوگی کہ اہل محشر اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہوں گے اور وہ اپنی زبان سے اٹک اٹک کر گرے گی اچھا اب دیکھیے بہرحال زبان درازی دیکھیے کچھ ہی عرصے پہلے ایک ملاقات ہوئی ایک اسلام آباد کے ایک بہت بڑے عالم یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ شاید میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پتہ نہیں پیش کیا تھا یا نہیں اس کو जबकि जब वो यहाँ पर आए तो कहने लगे मैं भी एक मदरसा ख्वातीन का चलाता हूँ इस्लामाबाद में। कह रहे थे कि बहरहाल ख्वातीन पर काम करने का फायदा ज्यादा है और नकद है, बिल्कुल कैश फायदा है। कह लेंगे देखिए लड़कों के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो लड़कों को पहले 5-6 साल यहाँ पर पढ़ाइए, फिर 10 साल ईरान पढ़ने भेजिए, जब वहां से 15 साल के बाद वो वापस आएंगे तो फिर हम उनसे कहेंगे कि आगा साहब आप कुछ फरमाइए, फिर वो मेंबर पे जाएंगे और कुछ फरमाएंगे। अच्छा ख्वातीन के साथ क्या है, कहने लगे अजरा है मजाक, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा बात को। कहने ख्वातीन के साथ ये कि बिल्कुल नकद है सौदा इनको सिखाने का। कहने के दुनिया के एतबार से जो उनकी दो बुराइयां हैं दीन के एतबार से उनकी खूबियां बन गई। बुराइयां क्या हैं, बोलती बहुत है, दूसरी चीज पेट की बड़ी हल्की होती है। आज इधर बात इनको बताओ अगले दिन पूरे माशरे के अंदर बात फैल जाती है, तो इनके ऊपर काम करने का बड़ा नकद सौदा है। मकसद कहने का यह है कि जो दुनिया के एतबार से बुराइयां थी वो दीन के एतबार से आपकी नेकियां बन जाती हैं अगर आप उसी जबान को तबलीगात के सिलसिले में इस्तेमाल करें। अच्छा अब ये जो कयामत के दिन जुबान दराज शख्स या कोई औरत होगी उसकी जो जुबान जमीन के ऊपर घिसटती हुई जाएगी और इतनी बड़ी हो जाएगी जुबान, तो उलमा ये फरमाते हैं कि ये परवरदिगार आलम ने इतनी बड़ी जुबान नहीं बनाई थी आपकी, बल्कि क्या है आपने खुद इसको इतना बड़ा कर लिया। फजूलियात, गीबत और अपनी जुबान को गुनाहों में आलूदा करने के बाद। अच्छा इसी तरीके से सूरह हज के अंदर भी जैसे कि आता है वल्लहुम मुकामिउ मिन हदीद, उनके लिए लोहे के गुर्ज होंगे कयामत में। बाकायदा सूरह हज की आयात में से कि उन लोगों के लिए गुनाहगारों के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। उलमा फरमाते हैं देखिए अगर हम किसी को नाजायज मारें, ऐबजोई करें, बुरा भला कहें, किसी की गीबत करें और बेइज्जती करें तो फौरन वो लोहे के गुर्ज में तब्दील हो जाती है वो चीज, जिसको हम रोजे कयामत फरिश्तों के हाथ में थमा देते हैं कि ये लो और हम हमारे ऊपर तबाजमाई करो। अच्छा इसी एतबार से इमाम खुमैनी अपने दरूस के अंदर बहुत ज्यादा एक चीज को बयान करते थे, फरमाते थे कयामत के दिन दो ग्रोह ऐसे होंगे कि जिनकी जुबानें बहुत लंबी होंगी। एक तो पीठ पीछे गीबत करने वाले, इनकी कयामत के दिन जुबानें बहुत लंबी हो जाएंगी, और दूसरी वो औरत जो अपने शौहर के साथ बहुत ज्यादा जबान दराजी करती है, इस कदर लंबी उसकी जबान हो जाएगी कि बाकायदा रोंदी जाएगी कदमों तले अपने भी और अहले महशर के कदमों तले भी। और फरमाते हैं उलमा के जिस माँ की जबान दराजी को देखकर बेटियों ने जबान दराजी सीखी और उन्होंने भी अपने शौहरों के साथ की, कयामत के दिन उस माँ को अपनी तमाम उस नस्ल का जो जब तक ये सिलसिला चलेगा और जबान दराजी और जो भी गुनाह माँ की वजह से फैले हैं उसको माँ को भी उसका पूरा पूरा गुनाह और अजाब दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो आप सुनती हैं ना जो कुरानी आयात भी हैं कि यौमाइज़िन यज़ुरुन्नासु अश्तातल लियराउ आमालहुम, कि कयामत के दिन मुख्तलिफ ग्रोह बाहर निकलेंगे ताकि वो अपने ले युराव आमालहुम, ताकि वो अपने आमाल का मुशाहिदा करें, यानी कोई आमाल मुजस्सम वहां पे लोगों को नजर आ रहे होंगे। अच्छा अब देखिए ये नहीं कहा कुरान की आयात में कि ले युराव जजा आमालहुम, ये भी कहा जा सकता था कि वो अपने आमाल की जजा को देखेंगे, नहीं ले युराव आमालहुम, वो अपने आमाल ही का मुशाहिदा करेंगे, यानी ये सब आमाल मुजस्सम हो जाएंगे, जितने भी गुनाह हैं ये आतिशी गुर्ज बन जाएंगे, ये सांप बन जाएंगे, ये बिच्छू बन जाएंगे, और जितनी भी नेकियां हैं ये उम्दा पानी में तब्दील हो जाएंगी, नहरें बन जाएंगी, मेवे बन जाएंगे, सब्जा जार और हुरो कसूर के अंदर तब्दील हो जाएंगे। जितने भी आप नेक आमाल अंजाम देती हैं इंक्लूडिंग आपका इस मदरसे आना, तालीम दीन हासिल करना, मोहम्मद आले मोहम्मद की तालीमात को सीखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जब भी आयात के जैसे कि सूरह आले इमरान के अंदर भी आया है कि ज़ालिका बिमा क़द्दमता अयदीकुम, यानी ये सब चीजें ये अज़ाब तुमने अपने हाथों से भेजे, अयदीकुम ये तुमने अपने हाथों से करके भेजे, और वह अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिलआबिद, और परवरदिगार रत्ती दाने के बराबर भी अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं किया करता। और यही वजह है कि जो अबू बसीर को छठे इमाम ने जो जुमला कहा था वो बातनी शक्ल थी आमाल की जो कि नजर आई थी, मा अक्सर उस जजीज व अकल्लुल हजीज, शोर किस कदर ज्यादा है, हाजी किस कदर कम है, कि कोई देखा था इमाम बाबू बसीर ने, कोई कुत्ता है तो कोई हाथी है तो कोई सुअर है, और मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल के अंदर हाजियों का मुशाहिदा किया था। यानी वही आमाल की एक सूरत थी जिसकी तफसील इंशाल्लाह आप लोगों की जो हज क्लासेस शुरू होने वाली हैं उसके अंदर बताया जाएगा आपको कि इसका मफहूम क्या है। अच्छा, इसी तरीके से जो उसमें भी आया है कि अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यकूमून, कि जितने भी सूद खाने वाले होंगे, जो सूरह बकरा में जो सूद खाने वाले होंगे, सूदी स्कीमों में पैसा लगाने वाले होंगे, या मसलन सूदी माल घर के अंदर लेकर आने वाले होंगे, ये सब क्या होंगे? ला यकूमून, ये लोग खड़े भी नहीं हो सकेंगे, इनका पेट इतना बड़ा हो जाएगा, यानी वो सूद एक मुजस्सम जाहिरी शक्ल में नजर आएगा, खड़े नहीं हो सकेंगे। और बाकायदा शेख बहाई ने अपने मसाबिउल अनवार में मासूमिन के हवाले से ये बात लिखी है कि इस तजस्सुम आमाल पर इस कदर रिवायात हैं कि जो शुमार से बाहर है। ये सब चीजें आप इन आमाल का बाकायदा मुशाहिदा करेंगी। अच्छा देखिए, कयामत का जो अजाब है ना तो ये इंतकाम है परवरदिगार की तरफ से, और ना ये किसी रंजिश का नतीजा है। परवरदिगार को तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, ये तो हमने खुद ही अपने आमाल को ये वाली शक्ल दे दी। वजदु मामलु हाजिरा, सूरे कहफ की जो आयत है कि वो अपने आमाल को अपने सामने हाजिर पाएंगे। अच्छा, बहुत सी रिवायत आयत में ये भी आया है कि वो उनका उनके जो बुरे आमाल होंगे उनकी पुश्त के ऊपर लदे हुए होंगे। अच्छा, खास तौर पर जो छठे इमाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया है कि ये उन अफराद के लिए होगा, दरूद भेजिए अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, के जो इस्लामी टैक्स जो हैं ज़कात और खुम्स के अंदर जो कोताही करते होंगे, इन अफराद के लिए है कि माल को उन उस साहिबे माल की गर्दन में एक सांप की सूरत में बांध दिया जाएगा जो कि इस्लामी टैक्स को अदा नहीं करते। अच्छा, बाकायदा रूहुल बयान में, तफसीर रूहुल बयान में इब्ने अब्बास का एक कौल है कि कोई मोमिन और काफिर भी ऐसा नहीं है जो कोई भी अच्छे या बुरे अमाल को अंजाम दे, अच्छे या बुरे अमाल को अंजाम दे, इल्ला अराहुल्लाहु इय्याहु, और परवरदिगार उसको ना दिखाए। यानी कोई अमल भी ऐसा नहीं है जो उसको ना दिखाया जाए, यानी सारे अमाल उसको मुजस्सम सूरत में वहां पर नजर आएंगे। इसी तरीके से बाकायदा शहीद मुताहरी ने तो एक अपनी किताब जो एक अदले इलाही है, अलहाज मिर्जा अली आका काजी, अली आका शिराजी, उनके मुतालिक ये बात कही है कि एक दफा दर्स दे रहे थे अली आका शिराजी, तो दर्स देते देते इतना रोना शुरू कर दिया कि पूरी दाढ़ी पूरी रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई, और फिर सुनाने लगे कि मैंने कल एक ख्वाब देखा था, मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है और मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो रही है, मुझे गुसल दिया गया, मुझे कफन पहनाया गया, मुझे कब्रिस्तान फिर ले जाया गया, और जब कब्रिस्तान में मुझको लाकर दफन कर दिया तो अचानक से मैंने देखा कि एक सफेद रंग का कुत्ता मेरी कब्र के अंदर आ गया। शहीद मुताहरी ने अदले इलाही में अलहाज मिर्जा अली आका शिराजी का यह ख्वाब जो कि उन्होंने खुद सुनाया अपने शागिर्दों को, वो नकल किया, कहा कि अब मैं बड़ा परेशान, वो सफेद रंग का कुत्ता मेरी कब्र के अंदर आ गया, कह रहे हैं मुझे फौरन पता चल गया, क्योंकि देखिए वहां पर कोई चीज आलम आखरत में फिर छुपी नहीं रहेगी, हकायक बिल्कुल आया हो जाएंगे, कह रहे मुझे देखते ही इस बात का पता चल गया, देखते ही पता चल गया कि ये मेरी तुर्श कलामी थी। यानी बाज़ औक़ात इंसान जरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा एकदम से तल्ख बात लोगों को कह देता है, कह रहे मैं फौरन देखते ही समझ गया कि ये मेरी तुर्श कलामी है जो बरज़ख़ी जिंदगी में मुजस्सम हो गई, हत्ता के बहुत सारे आपके ऐसे एक्शन भी मुजस्सम हो जाएंगे जैसे वो खुद फरमाते हैं, जबकि आलिम थे और बहुत बड़े आलिम थे, और कह रहे मैंने ख्वाब में ये चीज देखी। फिर फरमाते हैं कि अचानक मैंने देखा कि सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आ गए हैं कब्र में और फरमाते हैं कि देखो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इस कुत्ते को तुमसे जुदा कर दूंगा। फिर उसके बाद इमाम ने उस कुत्ते को वहां से हटाया और मैं पुरसकून हो गया। तो आपको याद होगा कि जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी कब्र की रात की, तो उसमें हमने बहुत सारे आमाल के मुजस्सम होने का भी तस्करा किया था कि जनाब एक तरफ से नमाज चली आ रही होगी, एक तरफ से रोजा चला आ रहा होगा, किसी तरफ से सब्र चला आ रहा होगा, किसी जगह से विलायत चली आ रही होगी और सिला रहम आ रहा होगा, इस तरह से। अच्छा, हम पिछली दफा भी हम ये तो यानी तमाम आमाल मुजस्सम नजर आ रहे होंगे, नामा आमाल का तस्करा हो रहा था। मोमिन अभी बड़ी कश्मकश की हालत में खड़ा हुआ होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरा नामा आमाल किस हाथ में दिया जाएगा। अचानक से जिस वक्त नामा आमाल उड़ता हुआ आ रहा होगा, नामा आमाल उड़ता हुआ आ रहा होगा किसी भी हाथ में अब आ जाएगा और हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। अचानक उसी वक्त एक नूरानी शख्सियत तशरीफ ले आएंगी जिनका नाम है इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। जो जायरीन से अपने जायरीन से वादा पूरा करने के लिए पहुंच जाएंगे। बहरहाल जितने भी खवातीन जिन्होंने इस ज्यारत से मुशर्रफ हो चुकी हैं, परवरदिगार उनको बार बार तौफीक दे, और जो अब तक मुशर्रफ नहीं हुई वो जरूर इसका जल्द से जल्द इकदाम कर ले, क्योंकि इतना बड़ा फायदा है ज्यारत इमाम रजा का कि इमाम ने वादा किया है कि इंदा ततायरुल कुतुब, जिस वक्त नामा आमाल उड़ता हुआ आ रहा होगा, परवाज करता हुआ आएगा, तो फौरन इमाम की शिफात से वो दाएं हाथ की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और आपके दाएं हाथ में नामा आमाल आ जाएगा और आपका अंजाम बखैर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक तो देखिए, एक तो यही नामा आमाल कौन से ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि हमारे दाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाए, एक तो हो गई ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, दूसरा जो कि तफसीर नूरुस्सक़लैन में मौलाए कायनात की भी एक रिवायत है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद के एहतराम और इज्जत को बढ़ाया वो ज़ाहिकम मुस्तबशिरा, वो परवरदिगार के हजूर मुस्कुराता हुआ आएगा और उसका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। तो बहरहाल मस्जिद की जीनतों को बढ़ाने के अंदर जो भी अफराद मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और इसी तरह से मस्जिद की कोई तामीर में हिस्सा लेता है, कोई पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है, मस्जिद की कुछ तज़ीन और आराइश करता है, उसको कुछ गुड लुकिंग बनाता है, कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, वाहिकम मुस्तबशिरा, वो कयामत के दिन बहुत हंसता मुस्कुराता आएगा और नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अच्छा, ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका ये है जो खुद पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाने के लिए रवाना किया जा चुका था, अचानक से उस शख्स का खौफ इलाही आ गया और उस खौफ इलाही ने उसका नामा आमाल ले लिया और उसके दाएं हाथ में मुंतकिल कर दिया गया। यानी परवरदिगार, ये जो गुनाह हम करते हैं ना, इसको करते वक्त इंसान खुदा से डरे और गुनाहों से परहेज करने की कोशिश करे। ये इसका खुदा से डरते रहना, तौबा की तरफ माइल रहना, ये खौफ खुदा से कांपना, ये सब मैदान कयामत में उसके काम आएगा। और बाएं हाथ में दिए जाने के लिए रवाना भी हो चुकेगा नामा आमाल, तब भी खौफ खुदा दरमियान में आ जाएगा और वो आके उसको उचक लेगा नामा आमाल को और उसके दाएं हाथ में लाकर दे दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से चंद सूरों की तिलावत है जो मुख्तलिफ मवारिद के लिए हम मुख्तलिफ सूरा अब तक बताते रहे जो आयमा अहले बैत की तालीमात में चीजें आई हैं सारी। अच्छा, उसमें यह है कि जो नामा आमाल जिन सूरों की तिलावत से दाएं हाथ में दिया जाता है उन सूरों के नाम लिखिए। सबसे पहले है सूरह तौहा की तिलावत, सूरह तौहा। यहां तक मिलता है कि जो भी इसकी बाकायदगी से तिलावत करेगा नामा आमाल उसका दाएं हाथ में दिया जाएगा और उसके पिछले आमाल का कोई मुहासिबा ही ना किया जाएगा। ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद। दूसरा सूरा है सूरह मोहम्मद, और तीसरा सूरा है जो पांचवें इमाम ने फरमाया वो है सूरह दुखान। ये तीन सूरे हैं, सूरह तौहा, सूरह मोहम्मद और सूरह दुखान। जो भी इनकी कसरत के साथ तिलावत करेगा उसका नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये वादा है आयमा मासूमीन का। तो बहरहाल कुरान की तिलावत से रुगरदानी ना करें, और चंद एक फकत जो छोटे छोटे याद सूरे हैं उन्हीं पर इक्तफा ना करें बल्कि इन बड़े सूरों की तरफ भी जाएं जो निस्बतन बड़े हैं, क्योंकि उनका सवाब और फायदा भी फिर बहुत बड़ा। अच्छा, ये जो दाएं और बाएं हाथ का जो मसला है ना, ये बहरहाल हर शख्स के हाथ में तो नामा आमाल दिया जाएगा। अच्छा, दिमाग में ख्याल आता है बहुत सारे अफराद के कि आइमा के कौन से हाथ में नामा आमाल यानी दाएं हाथ में दिया जाएगा, सबको पता ही है। लेकिन लोगों ने देखा कि आठवें इमाम जो है हमारे, वो मैदान मिना में मौजूद है, दाएं हाथ से उन्होंने टेक लगाई हुई है और बाएं हाथ से कुछ खा रहे हैं, बाएं हाथ से खा रहे हैं। असहाब ने एक दूसरे से जिक्र किया और बड़ी हैरानगी का इजहार किया, तो सहाबियों में से एक ने कहा कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक की बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि छठे इमाम ये बात बयान फरमा गए। देखिए, इमाम बाएं हाथ से खा रहे थे, दाएं हाथ से टेक लगाई हुई थी आठवें इमाम ने, सहाबियों ने एक दूसरे को जरा कश्मकश में आ गए कि इमाम बाएं हाथ से खा रहे हैं जबकि तालीमात तो ये हैं। तो एक सहाबी ने कहा कि मैंने खुद छठे इमाम से ये सुना है कि इमाम मासूम जो होता है उसके दाएं और बायां कोई हाथ नहीं होता, दोनों हाथ उसके दाएं हाथ होते। तो बहरहाल ये आइम्मा के सिलसिले में ये मसला नहीं। अच्छा, अभी जो आपने इससे बात से पहले बात सुनी थी कि नामाए आमाल में एक एक चीज लिखी जाती है और नामाए आमाल में जनाब एक फूंक भी मारती हैं तो वो भी लिखी जाती है, हत्ता के रिवायात में है कि किसी के लिबास के मुतालिक कोई बात अगर कही जाएगी तो वो भी नामाए आमाल में लिखी जाती है। बाकायदा रिवायत में जुमला इस बात का आया है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक दफा अपने दिल में किसी खास खाने की ख्वाहिश की थी कि मैं फूला खाना जो है रोटी के साथ खाऊं। पूरा साल गुजर गया और अपनी इस ख्वाहिश का किसी से इजहार नहीं किया, दिल में रखी है ख्वाहिश, यहां तक कि एक साल बाद अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस बात का तस्करा किया कि बेटा मेरा दिल चाहता है कि मैं रोटी के साथ फलां सालन खाऊं। इमाम हसन ने फौरन उसका इकदाम किया और उसके बाद मौला ने फिर अगले दिन रोजा रखा और जब इफ्तार का वक्त करीब आया और वो सालन लाके इमाम का पसंदीदा जिसकी एक साल से दिल में ख्वाहिश थी लाकर रखा, तो इमाम ने कहा कि बेटा हसन जाओ और खाने को उस साहिल को देकर आ जाओ जो दरवाजे पर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं रोजे कयामत अपने नामा आमाल में लिखा हुआ पाऊं कि इसने अच्छे आमाल पस्त दुनियावी जिंदगी में जाया कर दी। यानी इस हद तक इमाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नामा आमाल में ये बात भी लिखी जाए, इस वजह से कि सिर्फ यानी इसने इतनी छोटी बात कि इसने खाने की इस ख्वाहिश का इजहार किया और ये मैं नहीं चाहता कि मेरे नामा अमाल में, क्योंकि एक एक बात लिखी जाती है तो जो भी आप ख्वाहिश भी करती हैं वो भी आपके नामा अमाल में इस तरह से लिखी जाती है। अच्छा, अब नामा अमाल की तो अब पूरी तकरीबन हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है। अब जब नामा अमाल पढ़ लेगा, वो सुना दिया जाएगा उसको, वो देख लेगा, हर चीज का मुशाहिदा कर लेगा, अब उस नामाए आमाल के मुतालिक सवाल जवाब शुरू होंगे। अब हमारी आज की गुफ्तगू असल में आज अब शुरू हो रही है कि अब सवाल जवाब जो है वो क्या होंगे। देखिए वो जो शेर है ना कि अब है रोजे हिसाब का धड़का, पीने को तो बेहिसाब पी ली, यानी वाकई है कि गुनाह तो जी भर के बेहिसाब कर लिए, अब है रोजे हिसाब का धड़का, यानी अब जब हिसाब लिया जाएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा देखिए, सबसे पहला सवाल यह होता है कि किन किन लोगों का हिसाब लिया जाएगा। इसका जवाब है कि तमाम लोगों का हिसाब लिया जाएगा, हत्ता के अंबिया व मुरसलीन तक का हिसाब व किताब होगा। सूरह आराफ की छठी आयत है, आप जाके देखिएगा, फलनस अलंदल लजीना उर्सिला इलेहिम वलनस अलंदल मुरसलीन, कि हम यकीनन उन लोगों से भी सवाल करेंगे जिनके लिए रसूल भेजे गए और उन अंबिया से भी उनके बारे में सवाल करेंगे। यानी दोनों से सवाल होगा, जिन लोगों के लिए अंबिया भेजे गए उनसे भी सवाल होगा और अंबिया से भी सवाल होगा। और दूसरी बात यह कि हर हाल में सवाल होगा, हत्ता के यहां तक है कि वही जो कुरानी आयत भी है, तुबदू माफी अनफसुकुम और तुकफू, जो कुछ भी तुम अपने दिलों में रखते हो या उसको छुपाते हो, ख्वाह तुम छुपाओ या जाहिर करो, उन सब के मुतालिक सवाल होगा, यानी हर चीज के मुतालिक सवाल होगा। हत्ता के नियतों के भी मुतालिक सवाल होगा, छुपे हुए ख्यालात के मुतालिक भी सवाल होगा। ये रिया, ये शिर्क, ये हुब्बे जाहो शोहरत की जितने भी नियतें जो खासतौर पर दीनदार हलकों के अंदर आ जाती हैं ना, इनके मुतालिक भी सवाल होगा, चाहे आप जाहिरी कितनी भी अच्छी शक्ल क्यों ना बना के रहें। देखिए बाज़ोकात हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, हमने बड़ी एक जाहिरी दीनदार शख्सियत अपनी बनाई हुई होती है जबकि अंदर से हम बड़े कमजोर होते हैं। वो जो शेर है ना कि बड़ी बारीक है वाइस की चालें, लरस जाता है आवाज़ आज़ा से, بعض اوقات انسان یعنی اس کی اپنے اوپر اس نے ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے دینداری کا, جبکہ وہ ہوتا ایسا نہیں. تو تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا. ولا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ حتمن تمہارے اعمال کے متعلق ضرور تم سے سوال ہوگا, حتمن سوال ہوگا. اچھا اب کچھ آیات دیکھیے ایسی بھی ہیں, کیونکہ ہم چند ایک بیچ میں خشک باتیں یوں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو اکیڈیمک بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, یعنی ایک لحاظ سے آپ کے سامنے پوری ایک معلومات بھی رہیں کہ کس کس طرح کی چیزوں کے سوال جواب ہوں گے. کچھ آیات ایسی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ سوال و جواب ہوگا ہی نہیں. کچھ آیات ہیں ایسی, سورہ قصص کی ایک آیت ہے, لا یسألوا عن ذنوبہم المجرمون, ہم مجرموں سے کوئی سوال نہ کریں گے. دیکھیے ابھی تو ہم کہہ رہے تھے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا, ایک ایک چیز کے متعلق سوال ہوگا, اور سورہ قصص کہہ رہی کہ ہم مجرمین سے سوال ہی نہیں کریں گے. تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں قیامت سے متعلق ہے ہی نہیں, یہ قارون کے واقعے میں ہے, اور اس میں خبردار کیا گیا ہے اپنے اپنے وقت کے قارونوں کو کہ دیکھو سنبھل جاؤ ورنہ قبر کے اندر تم سے ضرور, یعنی پھر تمہاری کوئی عذر خواہی نہیں ہوگی اور تم سے کوئی معذرت طلبی وہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی, ابھی بھی سنبھل جاؤ تم. اچھا اسی طریقے سے جو کہ سورہ رحمان میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, ہم قیامت میں انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے. دیکھیے یہاں تک آ گئی ہے بات کہ گناہوں کے متعلق انسانوں اور جنوں سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کی 19ویں جلد میں فرمایا ہے کہ اصل میں دیکھیے سوال و جواب کے جو منزلیں اور مرحلے ہیں نا, یہ مختلف ہوں گے, کہیں پر سوال ہوگا اور کہیں پر سوال نہیں ہوگا. یعنی سوال ہونے کا تعلق, جہاں پر آیات میں سوال ہونے کا تعلق آیا ہے وہ ایک مرحلے سے متعلق آیات ہیں, اور جہاں پر یہ ہے کہ سوالات نہیں ہوں گے وہ دوسرے مرحلے سے متعلق اس کا جواب آیا ہے. یعنی نہ ہونے کا تعلق ایک مرحلے سے ہے اور سوالات ہونے کا تعلق دوسرے مرحلے سے, اور یہ ان افراد کے لیے بھی ہے جو گناہوں میں اس قدر راسخ اور جری تھے کہ اب ان سے سوال و جواب کی کوئی ضرورت نہیں, بس اب ان کو فوراً داخل جہنم کیا جائے. اچھا اب یہ ہے کہ کون حساب لے گا, یہ جو سوال جواب حساب کتاب یہ کون لے گا. دیکھیے سب سے جو سورہ انبیاء کی آیت بھی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی ہے, وکفا بینا حاسبین, وہی ہم سب کا حساب لینے کے لیے بہت کافی. اچھا اب تفسیر قمی میں پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہوں کا حساب خود کرے گا اور پھر سب کو بخش دے گا, یعنی جو بخش دیے جانے کے قابل ہوں گے ان کو بخش دیا جائے گا. اور اسی طرح اس طرح سے پروردگار عالم حساب لے گا کہ کسی کو بھی اس بندے کے گناہوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا, یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین اور فرشتوں تک کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ پروردگار نے کیسے حساب کیا. اچھا اسی طریقے سے دیکھیے بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں, ابھی ہم تفصیل میں آئیں گے اگلی شاید ہماری گفتگو پل صراط کے موضوع پر ہوگی, کہ بعض افراد کو پل صراط سے گزرنے میں 50,000 سال لگ جائیں گے پل صراط سے گزرنے میں, اور بعض افراد ہوں گے جو بہت جلدی پل صراط کو کراس کر لیں گے. یعنی پل صراط پر کئی موقف ہیں, کہیں پر نماز کا ایک چیک پوسٹ ہے, کہیں پر روزے کی ایک چیک پوسٹ ہے, کہیں پر زکوٰۃ کی چیک پوسٹ ہے, کہیں پر حج کی چیک پوسٹ ہے, اس طرح سے. اچھا ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں پروردگار خود, یعنی جسمانیت کی بات نہیں ہو رہی, روایات آیات بھی ہیں اس متعلق, جیسے کہ سورہ فجر کی آیت ہے انا ربک لبل مرصاد, کہ پروردگار رسول یقیناً پروردگار تمہارا وہ گھات میں ہے یا تمہاری تاک میں ہے. یعنی ایک موقع ایسا ہے کہ جس کے متعلق عرفا کے دل بھی تھر تھرا جاتے ہیں, کہ جہاں پر پروردگار خود حساب لینے کے لیے موجود ہوگا. خود سے مراد پروردگار کی تو قدرت ہر جگہ پر ہے, لیکن کوئی ایک خاص جگہ ہوگی کہ جہاں پر پروردگار خاص گھات میں ہوگا. اس سے پہلے فرشتے بھی حساب کتاب لیتے رہے ہوں گے, لیکن لگتا یہ ہے ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پروردگار خود حساب لے گا और मुमकिन है कि पिछली चेक पोस्टों से इंसान गुजरता हुआ आ जाए और इस जगह ये मेरे साथ जो जगह है यहां पर आकर वो फंस जाए। अच्छा, कुछ रिवायात ऐसी हैं कि जिसमें है कि आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हिसाब लेंगे, कुछ रिवायत ऐसी भी जैसे कि वो आयत है ना, व इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, बहुत बड़ी बकसरत असल में इस पर रिवायात भी आई हैं कि जिससे ये पता चलता है कि हिसाबों किताब के जो मुतवल्ली होंगे वो आइमा अथहार अलैहिमुस्सलाम होंगे। अच्छा, इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, اللهم صل على محمد وعلى محمد، कि उन लोगों का हिसाबो किताब हमारे जिम्मे। और छठे इमाम इस आयत को पढ़ने के बाद ये कि इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, इसके फरमाने के इस आयत को पढ़ने के बाद इमाम ने इरशाद फरमाया कि फीना, ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई। और इन रिवायत का एक बहुत बड़ा जखीरा कि आइमा मासूमीन ही हिसाब किताब के मुतवल्ली होंगे, मीरातुल अनवार व मिश्कातुल इसरार में जमा किया गया है, बाकायदा एक बहुत बड़ा इसका एक जखीरा है। अच्छा, अब किन लोगों से हिसाब किताब लिया जाएगा कि देखिए, छठे इमाम जुमला इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा काफी की रिवायत है कि खुदा मखलूकात आलम में से सबसे पहले हजरत नूह का हिसाब लेगा, हजरत नूह को बुलाएगा और हजरत नूह को बुलाने के बाद ये कहेगा कि ए नूह, क्या तुमने तबलीग की थी जो तुम्हारे जिम्मे की गई थी? हजरत नूह कहेंगे हाँ परवरदिगार, मैंने अपने तबलीग को सर अंजाम दिया है। कहा है नूह गवाह लेकर आओ कि तुमने तबलीग की थी। हजरत नूह पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पहुंचेंगे, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार ने मुझसे पूछा है कि तुमने अपनी तबलीग के गवाह पेश करो, मैं आपको तबलीग के गवाह के तौर पर पेश करता हूं। पैगंबर इस्लाम उस वक्त मुश्क के एक मिंबर पर, जो खुशबुओं से बसा हुआ मिंबर है, उस पर तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पैगंबर इस्लाम खुद गवाही नहीं देंगे, कहेंगे कि ए जाफर तैयार और हमजा मेरे चचा, आप जाइए और आप नूह की गवाही दीजिए कि नूह ने तबलीग के उमूर को सर अंजाम दिया था। उसके बाद छठे इमामी फरमाते हैं कि जाफर और हमजा जाएंगे और पैगंबरों की तबलीग के गवाह बनेंगे, जाफर तैयार और हमजा। रावी ने पूछा छठे इमाम से कि मौला, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त कहां होंगे? असूलन तो ये कि अगर पैगंबर इस्लाम गवाही नहीं दे रहे थे तो मौलाए कायनात को गवाही देनी चाहिए थी। तो इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया, अली का दर्जा इस बात से बहुत बुलंद है कि वो नूह और पैगंबरों के लिए उनकी तबलीग की गवाही दें। इस काम के लिए तो जाफर तैयार और हमजा भी यानी बहुत काफी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि खुद आइम्मा के अस्हाब का कितना बड़ा मुकाम है, कि मौला कायनात का तो मुकाम इससे भी कहीं बुलंद है कि वो नूह की तबलीग की गवाही के लिए जाएं। अच्छा, इसी तरीके से खाली नूह नहीं होंगे, फिर तमाम पैगंबरों से भी सवाल जवाब शुरू होंगे। और बाकायदा छठे इमाम फरमा देंगे, जब खिजर और मूसा की जो मुलाकात हुई थी तो खिजर ने मूसा से यही कहा था कि मूसा, उस दिन जरूर तुम्हें हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा और तुमसे बासपुरस की जाएगी, बस इस दुनिया से नसीहत हासिल करो। ये बाकायदा जुमले हैं जो खिजर ने मूसा को कहे थे। अच्छा, इतना और बता दिया जाए कि जो पैगंबरों से जितना भी सवाल जवाब होंगे ना, ये सब उनकी शान के मुताबिक होंगे। अंबिया से हिसाबो किताब जरा सख्त और दकीक होगा, और जितना जिसका मर्तबा बुलंद होगा उसके मुताबिक उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अच्छा, हर एक से सवाल जवाब होंगे। जब हम ये बात करते हैं हर एक से सवाल जवाब होंगे और तमाम अंबिया से होंगे, तो हम ये समझते हैं कि शायद फिर रसूल अल्लाह से भी होंगे और आइमा अथार से भी होंगे। नहीं, मामन आमा इल्ला वक़त खुस्सा, कोई उमूम ऐसा नहीं है जो तख़सीस खुर्दा ना हो, कोई रूल ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें जब कहा जाए कि सबका होगा तो ये अंडरस्टूड है कि आइमा अथार और जनाब रसूल खुदा उस बात से मुस्तसना। ये तो बल्कि बाज़ रिवायत में ये है कि जो मोमिनीन कामिलीन होंगे और जो खालिस कुफ्फार और मुशरिकीन होंगे, इनका भी हिसाब किताब नहीं होगा। जो खालिस मोमिनीन होंगे ये भी बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, और जो खालिस कुफ्फार और मुशरिकीन होंगे ये भी बिला हिसाब किताब जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा, इसके बाद तफसीर मजमूल बयान में भी है, तफसीर साफी में भी है, तफसीर बुरहान में भी है, اور آئمہ کے بڑے ارشادات ہیں اس متعلق کہ شرف جنوں ان سے فقط مومنین اور خالصیوں کو حاصل ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ان سے ضرور اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور جو ساتویں امام ہیں ہمارے، ان کا تو جملہ یہاں تک کہ بہار الانوار کی ساتویں جلد میں کہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمے، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، انبیاء کا حساب پروردگار عالم خود لے گا، اچھا انبیاؤں کے جانشین کا حساب کتاب انبیاء خود لیں گے، اور امتوں کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اماموں کے سپرد ہوگا۔ باقاعدہ تفسیر صافی میں بھی ہے، تفسیر المیزان میں بھی ہے، اور پانچویں ساتویں اور دسویں امام سے روایت ہیں سلسلے میں کہ کون کس کا حساب کتاب لے گا۔ اچھا پھر سوالات کیا کیا کیے جائیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے، تاکہ سوالات بھی آج ہی ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ ان سوالات کی پریپریشن کر سکیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو سورۃ تکاثر، یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا، ضرور سوال ہوگا۔ یہ تو بات مشہور ہے، ظاہر ہے کہ آپ مجالس پڑھتی ہیں، ذاکرات ہیں، کہ یہاں نعمت سے مراد نعمت ولایت ہے، اور علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کی جو بیسویں جلد ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض نعمتوں سے مراد کھانا پینے کے متعلق بھی اگر سوال کرنا ہو، کوئی کسی کے دماغ میں ہے کہ بھائی یہ بھی تو نعمتیں ہیں اور نعمت سے مراد یہ ہے، تو اس کے بھی معنی یہ نہیں کہ ہم سے نعمتوں کے متعلق ویسے سوال کیا جائے گا کہ یہ تم نے اتنا کیوں کھایا تھا اور فلاں چیز کیوں کھی تھی اور ایسی چیز کیوں پہنی تھی، بلکہ کس کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جو مثال دی گئی ہے، جس طرح سے کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے ایک باپ جو اپنے بیٹوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، تو باپ اپنے بیٹوں سے یہی تو کہتا ہے نا کہ دیکھو میں نے تم کو کھانے کو دے رہا ہوں، پینے کو دے رہا ہوں، رہنے کو رہائش دے رہا ہوں، گاڑی میں نے تم کو دی ہوئی ہے، کھانا پینے یہ پھل تم کو دیے تاکہ تم پڑھو، اور تم جو ہے سب کچھ کھا گئے لیکن کر کے کچھ نہیں دیا تم نے، نہ پڑھ کے دیا۔ تو اسی طریقے سے پروردگار آخرت میں جو نعمتوں کے متعلق سوال بھی ہوگا نا، تو علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس وجہ سے ہوگا کہ نعمتوں کے متعلق نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو پروردگار کے لیے کتنا استعمال کیا، یہ سوال ہوگا، خدا کی راہ میں تم نے کتنا استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عمر کو تم نے کیسے گنوایا، اپنی جوانی کو کیسے خرچ کیا، اپنے مال کو کیسے خرچ کیا، اور اس کے بعد ولایت آل محمد کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اور جب تک ان سوالوں کے جواب دینے ہی دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا میدان قیامت میں، حتیٰ کہ آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی کہ جانوروں تک کو محشور کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ جو آپ قرآن کے اندر بھی پڑھتی ہیں نا، اچھا جانوروں کو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی مکلف ہے ان کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے، بلکہ جانوروں کو جو محشور کیا جائے گا وہ اس وجہ سے تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے ہم پر ظلم کیا تھا، اس وجہ سے جانوروں کو بھی محشور کیا جائے گا۔ باقاعدہ بہار کی ساتویں جلد میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے اونٹ کے اوپر بہت زیادہ سامان لادا ہوا، اتنا زیادہ سامان، اور اونٹ بہت دیر سے ایسے ہی بندھا کھڑا ہوا ہے، تو پروردگار تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے مالک کو قیامت کے حساب کے لیے خود کو آمادہ کر لینا چاہیے، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اونٹ کے اوپر اتنا بلا وجہ اتنی دیر تک ظلم کیوں کیا اور اس کو باندھ کے رکھا۔ اچھا اسی طریقے سے وہ جو قرآن آیات بھی ہیں کہ والدین سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو مثلا زندہ درگور کیوں کیا، کیوں ان کو قتل کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی یہ بھی ہے کہ اَیَّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی وہ کہے گی کہ میرا جرم کیا تھا کہ جو مجھے قتل کیا گیا۔ دیکھیں بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن پر آج کل کسی بھی جگہ بات چیت کرنی بڑی مشکل، لیکن اب تو خیر ماشاءاللہ ٹی وی بھی اب اتنا آزاد ہو گیا، اتنی کھلم کھلا حدود آرڈیننس کے لحاظ سے بھی گفتگو ہوئی ہیں پچھلی دفعہ ٹی وی پر، تو بہرحال اگر کسی جگہ ایسی بات ہو بھی جائے تو بہت زیادہ یہ چیز عام ہے، ایبارشنز وغیرہ کروانا، یعنی کہ صاحبان ایمان تک کے اندر۔ تو بہرحال یہ قیامت کے دن والدین سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، بے ائی ضمن قتلت، کس گناہ کے جرم میں اس کو قتل کیا گیا اس بچے کو، تو بہرحال یہ بھی سوال ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آج کل، یہ بھی بہت چیز عام ہو گئی ہے کہ مثلا کسی سے قرضہ لیا اور قرضے کو واپس نہیں کیا، کہ باقاعدہ بہار ہی کی ساتویں جلد کے اندر ہے کہ جو لوگ قرض ادا نہیں کرتے ان کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا، اور جو قرض خواہ ہے اس जो मकरूज है उसकी नेकियां काट के कर्ज ख्वाह के नामा अमाल में लिख दी जाएंगी। और इसी तरीके से अगर वो बहुत ज्यादा उसके इस तरह से नेकियां ट्रांसफर हो गई तो फिर जो कर्ज ख्वाह है और जिस शख्स ने उसका कर्जा वापस नहीं किया था, कर्ज ख्वाह की गुनाह काटकर मकरूज के नामा अमाल में लिखे जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से खुद मौला भी ये जुमला इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार किसी भी जालिम से कोई चश्म पोशी नहीं करेगा, ख्वाह वो जुल्म कोई बहुत छोटा ही क्यों ना हो, बहुत छोटा सा भी जुल्म क्यों ना हो, आज के दिन कोई भी जालिम निजात नहीं पा सकेगा सिवाय इसके कि जिसको मजलूम माफ कर दे। अच्छा, फिर सवाल होगा गुनाहगारों से, जैसे कि हमने पिछली दफा भी हमने जिक्र किया था, क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हें किस राह पे चलना है, क्या तुमने फिकी मसले मालूम किए थे फला नेक अमल को अंजाम देने के लिए, तुम्हें पता था कि फला जगह पर तुम्हारा वजीफा शरई क्या था? वो कहेगा हाँ परवरदिगार, या वो खातून कहेगी हाँ परवरदिगार, मैं मदरसे में पढ़ चुकी थी, मैं ये सब चीजें सीख चुकी थी। फिर पूछा जाएगा कि तुमने अमल क्यों नहीं किया, अगर वो ये कहेगा कि नहीं मैंने सीखा ही नहीं था तो पूछा जाएगा कि तुमने सीखा क्यों नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी रिवायत में भी ये बात आई है कि मुत्तकी अफराद जो किसी भी मोहल्ले के अंदर रहते हैं, परवरदिगार उनको फासिकों के सामने हुज्जत बना के पेश करेगा, देखो ये भी तो तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, ये औरत भी तो तुम्हारे मोहल्ले में रहती थी, इसकी नेकियां कितनी जाहिर होती थी लेकिन तुमने इसके बावजूद भी इससे कोई असर नहीं लिया, तुमने क्यों इसकी राह को इख्तियार नहीं किया। इसी तरीके से हजरत लूत की और हजरत नूह की जो गुमराह बीवियां होंगी, जिन्होंने सालों दस्तरखान रिसालत के ऊपर, रिसालत और वही पर जो है वो रोटियां तोड़ी हैं, ऐसी औरतों को भी लाया जाएगा जो बड़ी फारिगुल बाल हैं, हर लिहाज से बड़ी आजाद हैं और घर के अंदर बड़ा वो ऐशो आराम के साथ रहती हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम इस तरीके से जो एक बेताज रानी बन के इस घर के अंदर रही हो और तुमने क्यों आखिर नूह और लूत की बीवियों का सा तर्ज अमल इख्तियार किया कि इतनी तुमने रोटियां तोड़ी लेकिन अपनी इसलाह की कोई फिक्र नहीं की। और उनके सामने ऐसी औरतों के सामने हजरत आसिया को, जैसे कि हमने पिछली दफा कहा है कि उनको पेश किया जाएगा कि तमाम तर सख्तियों के बावजूद भी ये दीन पर साबित कदम रहीं और इन्होंने गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं किया। फिर यह भी सवाल होगा लोगों से कि तुमने लोगों के अमवाल के मुतालिक, तुमने लोगों की इज्जतों के मुतालिक, तुमने लोगों की शख्सियत के जो उमूर हैं उनके मुतालिक तुम्हारा हुसन सलूक क्या था, और कुराबा की दस्तगीरी के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा कि तुमने दस्तगीरी क्यों नहीं की, कि तुम अपने बच्चों के ऊपर तो फरावानी के साथ दौलत खर्च करते रहे, तुम उनको हजारों रुपए के खिलौने लाकर देते रहे और बिरादर मोमिन जो था तुम्हारा उसके बच्चे हसरत से देखते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे पास घर था, गाड़ी थी, तमाम जरूरियात जिंदगी की चीजें थी और फला मोमिन उसके पास अपने घर को किराए अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और तुम अपनी दौलत और तिजोरियां अपनी भरते रहे और क्यों उसका तुमने ख्याल नहीं किया, ये पूछा जाएगा उससे। दौलतमंदों से पूछा जाएगा कि ये जो गरीब शादीशुदा लड़कियां थी इनकी शादियों का इंतजाम तुमने क्यों नहीं किया, क्यों इस आयत के ऊपर अमल नहीं किया, वनकहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमायकुम इन यकूनु फुकरा युग्निहुम अल्लाहु मिन फजलिही। ये जो खुतबा निकाह के अंदर भी जो आयत पढ़ी जाती है कि औरत और मर्द में से जो भी बेजन और शोहर के हों उनका तुम निकाह कर दिया करो और अपने नेक गुलामों और कनीजों का भी निकाह कर दिया करो, वो अगर फकीर भी होंगे तो खुदा अपने फजल से उनको गनी कर देगा। खुलासा ये कि हर शख्स के अपने मुकाम और हैसियत के मुताबिक सवाल जवाब होंगे वहां पर, ऐसा नहीं होगा कि रुपया, दो रुपए, पांच रुपए देने से कोई शख्स जो है वो सोचे कि मेरे तो जिम्मा अदा हो गया, नहीं, जितनी जिसकी इस्तेआत थी उसकी हैसियत के मुताबिक उससे सवाल जवाब होंगी। वो ये कह के नहीं छूटेगा परवरदिगार मैंने दो रुपए सदका दे तो दिया था, नहीं, ये उजर तराशी कोई फायदा नहीं देगी। अच्छा, इसी तरीके से आमाल में नियतों के खुलूस की जांच पड़ताल भी की जाएगी और तमाम जितने भी बहाने होंगे वो सब नाकाबिले समात होंगे। नेमतों के मुतालिक भी सवाल होगा कि मसलन तुमने इतने माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह से परवरदिगार की नेमतों को इस्तेमाल किया लेकिन तुमने परवरदिगार का शुक्र तक नहीं अदा किया, यानी उसकी नेमतों को क्यों आखिर दीन की फरोख के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा शख्स जो खुदा की नेमतों को उसके लिए इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा शख्स नाशुक्र और बागी। बाकायदा तफसीर फसलुल खिताब में अल्लामा आयतुल्ला अली नकी नक्कन साहब फरमाते हैं कि बज़ाहिर कब्रों से तो लोग साथ निकलेंगे लेकिन हिसाबों किताब के मरहलों में अलग अलग कर दिए जाएंगे, ये अलग अलग होंगे। और फिर उसके बाद फमन यामल मिसकाल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा, एक एक जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो वो भी देख लेगा, वो जर्रा बराबर भी बुराई की होगी तो उसको भी वो देखेगा। हत्ता के कोई चीज आपने किसी की राह से हटाई होगी, कोई इसमें उलझ कर ना गिर जाए, उसमें भी आप वो भी लिखा हुआ होगा, वो भी आपके सामने आएगा। किसी को आपने बैठने के लिए कुर्सी दी, किसी को कोई चीज उठाकर दे दी, किसी को पानी पिला दिया, यानी बड़ी से बड़ी नेकी और छोटी से छोटी बुराई सब कुछ लिखी हुई होगी। हाँ, अलबत्ता आपने किसी को कुछ कह दिया, तंस कर दिया, ताना दे दिया, किसी को नोच लिया, धक्का दे दिया, डरा दिया, मजाक किया या किसी का मजाक उड़ाया, तो इसका भी सवाल जवाब होगा। और जो सबसे अहम सवाल होगा जो सूरह साफ़ात में है, वकेफूहुम इन्नहुम मसूलून, इन्हें रोको, इनसे कुछ पूछना, इनसे कुछ सवाल करना, इन्हें रोको। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा एक सवाल ऐसा है, उलमा ने इसमें जिक्र किया है कि दुनिया में कोई सवाल उम्मत के सामने रखा गया था, इसका जवाब देना है इस मरहले पर, वकेफूहुम इन्हें रोको, इन्नहुम मसूलून, किसी भी अजर का, ला असअलुकुम, देखिए यहां भी सवाल का लफ्ज आया, सिवाय इसके कि मेरे जिल कुर्बा से मोहब्बत करो, तो यहां वरना ये सवाल बेजवाब ही रहेगा हमेशा, तो वहां पर इसका जो है वो सवाल किया जाएगा। अच्छा, एक फिर एक चीज और भी है कि कहीं ये कि मोहब्बत अहले बैत के मुतालिक सवाल होगा, और एक रिवायत ये भी है जो कि बल्कि कई रिवायतें इस सिलसिले में कि जो कि पांचवें इमाम ने भी इरशाद फरमाई है कि सबसे पहले बंदा मोमिन से नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा, फाइन कोबिलत कोबिला मा सवाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सवाहा, जो सात बिहारुल अनवार की सातवें जिल्द में भी। अच्छा, अब एक तो ये भी चीज होगी। अच्छा, फिर उसके बाद पैगंबर इस्लाम ये फरमाते हैं कि जब लोग गुजर रहे होंगे मेरे पास से, जब लोग गुजर रहे होंगे उस वक्त भी लोगों को मेरे पास रोका जाएगा, उस वक्त मैं उनसे पूछूंगा तुमने मेरी किताब और मेरे अहले बैत से क्या सलूक किया, ये सवाल होगा उस वक्त। अच्छा, इसी तरीके से शेख अब्बास कुम्मी ने भी, यानी हम ये जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या सवाल होंगे, शेख अब्बास कुम्मी ने उस्ताद अबू सुलेमान दारानी के हवाले से कि एक शागिर्द ने उनको मरने के बाद ख्वाब में देखा और कहा कि एक बूढ़ा शख्स था कि जो कि एक ऊंट पर घास को लेके जा रहा था, उनके उस्ताद को उनके शागिर्द ने ख्वाब में देखा, मैंने उसमें से उस जो गट्ठा था घास का उसमें से एक तीली निकाली, उससे खिलाल किया, कहा कि मैं जब से मरा हूं आज तक इस चीज पर मेरा मुहासिबा हो रहा है कि मैंने मालिक की इजाजत के बगैर उस चीज को क्यों इस्तेमाल किया था। तो इमाम फरमाते हैं कि छोटे से छोटे गुनाह से भी परहेज करो, क्योंकि बगैर तौबा के कोई गुनाह बख्शा नहीं जाएगा। और बाकायदा किसी तालिबा की कोई बात मुझ तक आई भी थी कि किसी ने उन्होंने किसी का ख्वाब नकल किया था कि किसी खातून ने ख्वाब देखा था कि उन्होंने अपने किसी अजीज या रिश्तेदार का हज करवाया था, जो हज उन पर वाजिब था और अंजाम नहीं दे सके थे, और उन्होंने उसका हज करवाया, उसके बाद खुद उन्होंने देखा कि कोई जेल सी है जिसके अंदर वो मरहूम मौजूद है, और उन्होंने उस जेल का हज के बाद उस जेल का दरवाजा जाकर खोला और उन मरहूम को वहां से आजादी मिली, तो उन मरहूम ने कहा कि इस हज को अदा करने के बाद आज मैं आजाद हुआ हूं। यानी इस तरह के जितने भी, वरना सवाल जवाब उनका होता रहेगा कि तुमने फला फला वाजिब क्यों नहीं अंजाम दिया था। अच्छा, हत्ता के यहां तक इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया कि तुम लोग अल्लाह के शहरों की भी रियायत करो, क्योंकि यकीनन तुमसे जमीनों के मुतालिक और उस पर हैवानात के मुतालिक भी तुमसे पूछा जाएगा। अच्छा, देखिए बाकायदा पैगंबर इस्लाम की, जब भी हमने कहा कि हम एक एक अमल से चीज कशीद करनी चाहिए कि हम किस तरह से नामा अमाल में अपनी नेकियों का इजाफा करते चले जाएं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैदान कयामत में किसी भी शख्स के लिए तीन खजाने या तीन बॉक्सेस खोले जाएंगे। एक जो खजाना होगा वो नूर और सरूर से भरपूर खजाना होगा, और वो अपने उस खजाने को देखकर इतना खुश होगा कि अगर तमाम जहन्नुमियों पर उसकी खुशी तकसीम कर दी जाए तो तमाम जहन्नुमी अपनी परेशानी को भूल जाए। ये वो लम्हात होंगे जो उस बंदे मोमिन ने इताते इलाही में सर्फ किए होंगे। ये जो मदरसे में आप बैठी हैं इतनी शदीद गर्मी में, यहां पर حفظ بھی ہو رہا ہے, سب کیفیات ہیں, لیکن یہ جو خوشی کی صورت میں جو وہاں پر اس خزانے کے اندر جمع ہوتی جا رہی ہے, جب میدان قیامت میں آپ پہنچیں گے تو آپ کہ اتنی خوشی کہ اگر وہ سارے جہنمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے جہنمی اپنے غموں کو بھول جائیں. دوسرا خزانہ جو انتہائی بدبو اور تاریکی سے بھرپور ہوگا, اور اس میں اتنی پریشانی اس کو دیکھ کر ہوگی کہ اگر تمام جنتیوں پر اس کی پریشانی تقسیم کر دی جائے تو تمام جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں, اور یہ وہ لمحات ہوں گے جو اس نے گناہ میں بسر کیے ہوں گے اس دنیا میں. تیسرا خزانہ ہوگا جب وہ باکس کھولے گا تو وہ بالکل خالی ہوگا, نہ اس میں خوشی ہوگی نہ کوئی غم ہوگا, اور مثلا وہ تمام زندگی کے لمحات ہوں گے جو اس نے مباحات میں یا فضول کاموں میں لگائے. اس وقت اسے احساس ہوگا کاش میں اپنی زندگی کے ان لمحات کو کسی اچھے اور نیک عمل میں صرف کر لیتا تو آج یہاں پر مجھ کو یہ خزانہ مل جاتا. اچھا, اسی طریقے سے باقاعدہ حاجی نوری نے ایک رسالہ فیض القدسی فی احوال المجلسی کے نام سے لکھا تھا, اور اس میں ایک ذاکر کا خواب نقل کیا تھا, خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو مجالس پڑھتی ہیں. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھی جائے گی اور ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. ذاکر نے خواب دیکھا, اس کتاب کے اندر حاجی نوری نے اس ذاکر کا خواب نقل کیا. کہہ رہے ہیں, وہ ذاکر کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو دیکھا کہ میں قیامت برپا ہو گئی اور میں میدان قیامت میں تھر تھر کانپ رہا ہوں اور تمام لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور دہشت اتنی زیادہ ہے اور فرشتے ایک ایک کو پکڑ کر حساب و کتاب کے لیے لا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھے بھی حساب و کتاب کے لیے لایا گیا اور ممبر رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. سب سے اوپر پیغمبر اسلام موجود تھے اور اس سے ایک سیڑھی نیچے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ذاکر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اشس تو نے اپنی مجلس میں حسین کے متعلق یہ ذلت آمیز بات کیوں بیان کی تھی. دیکھیے بہت سارے افراد اپنی مجالس میں زیادہ رقت پیدا کروانے کے لیے کچھ جھوٹی چیزیں منسوب کر دیتے ہیں, ورنہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ مقاتل کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ کون سی علماء نے ریکمینڈ کی ہیں, وہ اپنے مقام پر آئے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ ایسی ذلت آمیز بات تو نے میرے بیٹے حسین سے کیوں مجلس میں منسوب کی تھی. وہ پریشان, کہہ رہے ہیں میں سخت پریشان ہو گیا اور میں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا. اسی وقت جو فرشتہ برابر میں کھڑا ہوتا مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرے ہاتھ میں ایک میخ سی ٹھونک دی گئی اور فوراً میرے ہاتھ میں پوری مجالس کی لسٹ پکڑا دی گئی جس پہ تمام مجلسیں لکھی ہوئی تھیں, اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ بات بھی لکھی ہوئی تھی جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میں نے رولانے کے لیے یہ ایک اپنی طرف سے کچھ اضافے کر کے روایت میں بیان کیا تھا. میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں نے علامہ مجلسی کی کتاب کی دسویں جلد کے اندر سے مسئلہ بیان میں نے یہ بات بیان کی تھی. میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے ممبر کے دائیں طرف تمام علماء اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے. فوراً اچھا یہ سارا حساب کتاب اب مولا کائنات نے لینا شروع کر دیا. مولا کائنات نے کہا کہ علامہ مجلسی کی کتاب کی دسویں جلد لے کر آؤ. کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑا دی گئی, اب میں صفحے پلٹ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کسی جگہ وہ ہوتی تو ملتی. اب میں شدید پریشان, میں نے فوراً کہا کہ نہیں علامہ مجلسی نہیں بلکہ حاجی صالح برغانی کی کتاب کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی تھی. فوراً حاجی صالح برغانی کی کتاب مولا کائنات نے منگا کے دی, نکال کے دکھاؤ کہاں. اب میں اس کتاب کے صفحے پلٹ رہا ہوں, یہاں تک کہ میں شدید پریشانی اور غمگین ہو کے کھڑا ہو گیا کہ ایک فرشتہ پروردگار کی طرف سے آیا اور کہا کہ اگر امیر المومنین نے اس طرح سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تو پھر تو کوئی شخص بچ ہی نہیں سکے گا, اور اے امیر المومنین ان سے نرمی اور مہربانی سے کام لے. اس فرشتے کے پیغام الہی کو سننے کے بعد مولا کائنات اس ذاکر کے حق میں بے انتہا نرم ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا گیا. کہہ رہے ہیں اس ذاکر کی آنکھ کھلی, فوراً اس نے توبہ کی, اور اس کے بعد بہرحال ایک چیز یہ ہوئی کہ اس نے ذاکری کو ہمیشہ کے لیے بالکل ترک کر دی. تو بہرحال اس میں یہ تو نہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ذاکری کو ترک کر دیا جائے, بلکہ کوئی بھی جھوٹی بات, کوئی بھی اس طرح کی کوئی جملہ بھی اس طرح سے آپ کی زبان سے ہل جائے تو میدان قیامت میں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ سے سوال و جواب کے مرحلے میں پوچھی جائیں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہرحال अच्छा, अभी इसका भी तस्करा हुआ कि जनाब नमाज के मुतालिक भी पूछा जाएगा। देखिए नमाज के मुतालिक सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, रोजे मैशर के जहां गुदाज बुअत अब वली पुरुष नमाज बुअत, ये सबसे पहले यानी नमाज के मुतालिक सवाल होगा। अच्छा किसी जगह पे है कि सबसे पहले विलायत के मुतालिक सवाल होगा, किसी जगह है कि सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल होगा, तो आखिर इन रिवायात में जमा किस तरह की जाए, यानी कैसे कहा जाए कि सबसे पहली क्या चीज होगी। तो उलमा ने कई जवाब लिखे हैं इसके। एक जवाब तो यह है कि विलायत जो है वो तमाम आमाल की कबूलियत की शर्त आजम है, जिसमें खुद नमाज भी शामिल है। विलायत तमाम आमाल की कबूलियत की शर्त आजम है जिसमें खुद नमाज भी शामिल है, और नमाज फकत दूसरे आमाल की शर्त कबूलियत है। यानी दोनों का दायरा बिल्कुल अलग अलग है। विलायत का दायरा अमूमी दायरा है, नमाज का दायरा खसूसी दायरा है। हत्ता कि तफसीर अय्याशी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है, कि पूछा जाएगा, कानों से भी सवाल होगा कि इन कानों से तुमने क्या क्या चीज सुनी थी, गाने सुने थे, गीबतें सुनी थी, तोहमतें सुनी थी, इनसे इनके मुतालिक हो। आंखों के मुतालिक सवाल होगा कि क्या क्या चीज, कौन कौन से मनाजिर टीवी पे, कौन कौन से बेहुदा काम देखे, एक एक के मुतालिक सवाल होगा। दिल के मुतालिक सवाल होगा, दिल में कौन कौन सी बुराइयां, कीने, बोझ, हसद और हराम ख्यालात, और तुमने कौन कौन से नजरियात कायम किए थे, इसके मुतालिक भी सवाल होगा। और हकूक नास की जो शिद्दत है उसका तो सवाल बहुत शिद्दत के साथ होगा। हकूक नास ये अपने जिम्मे कभी भी ना रखिएगा। अनवारे नोमानिया के अंदर बाकायदा रिवायत में है कि अहले जब महशर बपा होगा तो एक मनादी आकर ऐलान करेगा, जिस शख्स का इस शख्स पर कोई भी हक है वो आए और आकर ले जाए। अहले महशर के लिए रिवायत में है कि अहले महशर के लिए अपने पहचानने वालों से इससे ज्यादा सख्त कोई बात नहीं होगी कि वो उससे आकर कोई मुतालिबा करे, वो मुंह छुपा के अपने फिरने की कोशिश करेगा। उसी वक्त सादात जो मुस्तहकीन होंगे वो फरियादे करेंगे कि परवरदिगार हमें हमारा हक नहीं दिया गया, ये इस शख्स के ऊपर मसलन ये खुम्स निकालता तो हम तक हमारा हक पहुंचता, इसलिए हमारा हक खा गया। एक साहब के मुतालिक मुझे कहीं से इत्तला मिली थी उड़ती उड़ाती कई साल पहले, कि वो 4 करोड़ रुपए सहमे सादात के कई साल से लेके फिर रहे हैं, लेकिन कोई सैयद नजर ही नहीं आता कि किसको दें। तो बाज़ोका देखिए एक एक चीज का इस तरह से हिसाब होगा। इस तरीके से मुस्तहकीन ज़कात, मुस्तहकीन फितरा आ जाएंगे और इस शख्स की नेकियां काट काट कर उनके उनके आमाल नामे आमाल में लिखी जाएंगी। इस कदर सख्त होगा ये सवाल और जवाब लोगों के हकूक से मुतालिक के मुहद्दिस जज़ायरी फरमाते हैं कि एक चांदी के दाने के बराबर, यानी दिरहम का जो छठा हिस्सा होता है, समझिए कि चवन्नी का भी अगर हक किसी ने उसका मारा है तो एक चवन्नी के बराबर भी, तो 700 कबूल शुदा नमाजें काट के मुस्तहिक को जो जिसने मुतालबा किया है उसको दे दी जाएंगी। और ये सोच लीजिए कि जिसकी पूरी जिंदगी इसी में गुजरी हो, लोगों के हकूक को पायमाल करते हुए, कि उसका कितना बुरा हशर होगा। अच्छा इसी तरीके से इलालु शराय के अंदर भी है, जो आके आपके सामने पेश भी किया गया था कि कर्ज ख्वा जब तकाजा करेगा तो कर्ज ख्वा जो मकरूज की नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी, वरना फिर गुना लिखे जाएंगे। अच्छा हक्कुल यकीन में अल्लामा मजलिसी एक ने रिवायत लिखी है कि चौथे इमाम से एक दफा किसी शख्स ने आकर सवाल किया कि मौला ठीक है कि मुसलमान तो अगर किसी मुसलमान का कोई हक ले लेता है तो उसको तो कंपनसेट करेगा खुदा, यानी उसकी नेकियां उसके नामा अमाल से इसमें आ जाएंगी, लेकिन अगर किसी काफिर ने कोई हक हमारा मारा है तो काफिर के पास तो कोई नेकी नहीं है, जब काफिर के पास कोई नेकी नहीं है तो फिर कौन सी चीज नामा अमाल में आएगी। तो इमाम ने फरमाया कि उस हक के बराबर जितना उस काफिर ने लिया था उस काफिर के अजाब में इजाफा कर दिया जाएगा, उस काफिर के अजाब में इजाफा हो जाएगा। जब भी पैगंबर इस्लाम ने एक दफा लोगों से सवाल किया, ए लोगों तुमको पता है कि मुफलिस किसको कहते हैं, जो मशहूर है आप पढ़ती भी हैं, तो सहाबा कुछ ने कहा कि या रसूलल्लाह दिरहम व दीनार जिसके पास ना हो, माल व मनाल जिसके पास ना हो। पैगंबर ने कहा नहीं, असल मुफलिस वो है जो कयामत में नमाजों के साथ, रोजों के साथ, हज के साथ, जकातों के साथ, सदकात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी को गालियां दी होंगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा या किसी का मारा होगा, तो तमाम मजलूमों में उसकी नेकियां तकसीम कर दी जाएंगी और इस तरह से ये शख्स बिल्कुल मुफलिस हो जाएगा। ये है असल मुफलिस। और पैगंबर यहां तक फरमाते हैं कि एक दिरहम हमें तो पता नहीं ना, मसलन आपने किसी से कोई चीज ली उसको आपने वापिस की, इसका इतना सवाब है कि पैगंबर फरमाते हैं एक दिरहम अपने तलबगार को वापिस करना 1,000 साल की इबादत का सवाब दिलाता है, 1,000 गुलामों को आजाद करने का सवाब मिलता है, और 1,000 हज्जो उमरे से ये बेहतर है किसी के 1 रुपया उसको वापिस किया जाए जाकर। अच्छा, इसी तरीके से ये जो आप सुनती हैं कि मौला की जो हदीस है कि हलाल हुआ हिसाबन व हराम हुआ अकाबन, दुनिया का मसलन तुम क्या पूछते हो कि जिसको अगर हलाल से इसको हासिल किया जाए तो उसका हिसाब देना पड़ेगा और अगर हराम तरीके से हासिल किया जाए तो उसका अजाब भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, जहां पर बहुत सारी रिवायत ऐसी हैं कि जहां पर मोमिन की हिसाबो किताब, यानी कुछ जगहों के ऊपर यह भी है कि मोमिनीन से इसका कोई हिसाब नहीं होगा, अलबत्ता जो गैर मोमिनीन है इनको दुनिया की तमाम चीजों का हिसाब देना पड़ेगा, हद तक कि जो चीज खाते हैं पीते हैं इनका भी। बास कहते हैं कि जो जरूरी अखराजात हैं उनका तो हिसाब नहीं देना, मसलन हज के लिए, शादी के लिए, आम जरूरियात जिंदगी की चीजों के लिए, लेकिन इसराफ में अगर पैसा खर्च किया गया उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, यानी जायद जो चीजें होंगी उतना हिसाब किताब देना पड़ेगा। फिर कितनी तेजी के साथ ये हिसाब होगा, यानी ये जो सवाल जवाब हिसाब किताब कितनी तेजी से होगा, तो देखिए सूरह इनाम की जो आयत है कि वह हुआ असराउल हासिबीन, वो तो पलक झपकते में तमाम मखलूकात का हिसाब कर देता। एक शख्स मौला कायनात के पास आया कि परवरदिगार आलम इतनी बड़ी मखलूक का, आदम से लेकर कयामत तक की जो मखलूक है, इतने लोगों का हिसाब कैसे कर लेगा? तो इमाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि जिस तरह से वो एक वक्त में पूरी कायनात को रिस्क फराहम कर देता है इसी तरीके से वो हिसाब किताब भी कर लेगा। कहा कि मौला वो किस तरह से हिसाब किताब करेगा जबकि वो सामने मौजूद भी नहीं होगा? भाई हिसाब किताब वो करता है ना सामने मौजूद, और तमाम मखलूकात का हिसाब किताब कर रहा है। तो इमाम ने फरमाया जिस तरह से वो तमाम लोगों को रिस्क तकसीम कर देता है और लोगों के सामने नहीं होता, बस इसी तरह से हिसाब किताब भी कर देगा। तो बहरहाल अच्छा, कुछ आपने अभी सुना कि पलक झपकते में भी हिसाब किताब हो जाएगा, कुछ के मुतालिक ये है, ये मिलता है कि 2 रकत नमाज जितने में पढ़ी जाती इतनी देर में हिसाब किताब हो जाएगा, कुछ में ये है कि जनाब जानवर का दूध दोते वक्त जितना टाइम लगता है उसमें हिसाब किताब हो जाएगा। अलबत्ता कुछ अफराद का हिसाब किताब बहुत तुलानी भी होगा, यानी हिसाब किताब का तुलानी होना जवाब के तुलानी होने पर मौकूफ है, यानी जिसके जुल्म की दास्तान जितनी तवील होगी उतना ही तवील उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, जिसकी नाफरमानियां जितनी ज्यादा होंगी उतना ही तवील उसको जवाब देने पड़ेंगे, जितनी हकूक की पामाली होगी उतना ही ज्यादा देर उसको खड़ा होकर हिसाब देना पड़ेगा। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि जितने भी आम काफिर हैं, रिवायात से ये बात मुझ तक पता चली है कि इन तमाम काफिरों के जो अजाब की जो मुद्दत है, तमाम काफिरों की मुद्दत हिसाब जो है ये 1,000 साल, और सूरह सजदा की 5वीं आयत में इसमें इशारा भी किया गया, अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं। अलबत्ता बाज गुनाहगार ऐसे हैं काफिरों में कि जिनकी हिसाब की मुद्दत 50,000 साल तक है। जाहिर है कि बुश जिसके मजालिम इतने ज्यादा, सद्दाम जिसके मजालिम की कोई हद और इंतहा नहीं, इसराइल जिसके मजालिम की कोई हद और इंतहा नहीं, ये अरब हुक्मरान जिनकी मजालिम की कोई इंतहा नहीं, और कितने ही मुसलमान हुक्मरान भी, इनके वाकई सिया करतूत इतने ज्यादा हैं कि 50,000 साल इनको लगने ही है सिर्फ हिसाब किताब में, यानी जितना कुफर और जुल्म होगा उतने हिसाब किताब की मुद्दत ज्यादा होगी, और जितना ईमान और तकवा होगा उतने हिसाब किताब की मुद्दत कम होगी। अच्छा, इसी तरीके से बहरहाल वो जो कहा है ना किसी शायर ने कि बिन पूछे करम से वो बख्श ना देता तो पुरसिश में हमारी ही दिन हशर का ढल जाता, यानी अगर वाकई हिसाब इतने बुराइयां नामा अमाल में भरी हुई हैं कि अगर वो हमारा हिसाब किताब लेने पे आ जाता तो हो सकता है कि ये 50,000 साल का जो दिन है मैदान कयामत का, ये सिर्फ हमारी पुरसिश में ही ढल जाता है। अच्छा, अब कितनी सख्ती के साथ हिसाब लिया जाएगा, कौन बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा, कौन बिला हिसाब जहन्नुम में दाखिल होगा, कौन से हम ऐसे आमाल अंजाम दें कि हम बराह रास्त ये एग्जेम्प्ट हो जाए हिसाब किताब, ये देना हर एक के बस की बात नहीं, इतने मौकफों और चेक पोस्टों से गुजरना। तो आइम्मा अहले बैत ने और मासूमीन ने ऐसे तरीकेकार बता दिए हैं कि कौन से ऐसे तरीकेकार इख्तियार किए जाएं कि हिसाब किताब के किसी मरहले से गुजरना ही ना पड़े, और इतने सच्चे अफराद ने इन चीजों का वादा किया, अगर इन अमाल को अंजाम दे लिया जाए तो फिर कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि हिसाब किताब आपसे बिल्कुल मुस्तस्ना हो जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए, और इन मराइल से गुजरना ही ना पड़े जो इतने सख्त चीजों का हिसाब किताब, वरना कौन शख्स है कि उलमा ने बात लिखी भी है कि कौन कोई शख्स अगर अपने उसमें सच्चा भी हो अपने मौकफ में, तब भी वो अदालत के कटहरे में खड़ा होते वक्त तो बेइंतहा घबराता है, चाहे आप सच्चे भी क्यों ना हो, तब भी बहरहाल परवरदिगार आलम के सामने खड़े होकर सवाल और जवाब देने की किसी में ताकत और गुंजाइश नहीं है। बेहतर है कि इस मरहले से वैसे ही गुजर जाया जाए। और वो जो हम पुलिस सरात में भी बात मुझे बयान करनी थी जब अगली गुफ्तगु आनी थी, क्योंकि जब हिसाबो किताब हो जाएगा, सवालो जवाब नामाए अमाल को पढ़ने का सवालो जवाब हो गए, हिसाबो किताब हो गया, अब पुलिस सरात पर चलने का मरहला आएगा। पुलिस सरात की भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगु है जो आगे चलकर आएगी। पुलिस सरात पे फिर उसके बाद शिफात के मरहले कैसे तय होंगे, अच्छा उसके बाद फिर अभी नहीं, इसके बाद मीजान का हम तय करेंगे, अमाल को तोला जाना, ये अभी सब अमाल सामने आ गए ना, अब अमाल तोले जाएंगे, तराजू किस तरह की होगी इसकी पूरी तफसील आएगी, फिर पुलिस सरात से गुजरना होगा, फिर शिफात की गुफ्तगू आएगी, रहमत खुदा की गुफ्तगू आएगी, और उसके बाद फिर जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिले का एक तरीक़ेकार होगा, और उसकी तफासील हम उसके बाद अपनी गुफ्तगू में जिक्र करेंगे। आज की हद तक गुफ्तगू यहां पर रोकते हैं, अगरचे सवालात इसमें आपके चंद एक मेरे पास आ भी गए, लेकिन इंशाल्लाह इनके जवाब अगली दफा तहरीरी तौर पर दे दिए जाएंगे। और वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।
बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन।